भारत में 1 जुलाई से एकल उपयोग वाली कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? इस प्रतिबंध के बारे में हमें ज़रा विस्तार से बताएं।
पिछले साल 2021 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि धीरे धीरे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स फेज आउट होंगे। 2021 में गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स की घोषणा की, जिसके अंडर उन्होंने 19 कैटेगरीज और आइटम्स को बैन किया है। इसका फेजिंग आउट कुछ इस तरह से है कि 1 जुलाई से कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि एयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक क्रॉकरी कटलरी ट्रेज, और जो पतला रैपिंग पैकिंग होता है, प्लास्टिक पैकिंग अराउंड स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, पीवीसी बैनर्स, इन सब का उत्पादन, आयात, भंडारण, बांटना, बेचना, इस्तेमाल करना, ये सब कुछ प्रतिबंधित है। 1 सितंबर से प्लास्टिक बैग्स जिनकी थिकनेस मोटाई 75 माइक्रोन से कम है वो लिमिट हो जाएंगे, और 31 दिसंबर को ये थिकनेस को बढ़ाकर 120 माइक्रोन्स कर दिया जाएगा। सो बेसिकली 31 दिसंबर से प्लास्टिक बैग्स ऑफ ओनली थिकनेस मोर देन 120 माइक्रोन्स विल बी अलाउड, उससे कम मोटाई वाले जितने भी प्लास्टिक बैग्स हैं वो प्रतिबंधित होंगे।
तो इन 19 चीज़ों को ही क्यों, इन्हीं पर क्यों प्रतिबंध लगा है?
इन पे इसलिए प्रतिबंध लगा है क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से भी ये पता चलता है कि ये जो हैं आइटम्स, इनकी उपयोगिता जो है कम है, लेकिन लिटरिंग वैल्यू जो है बहुत जल्दी ये कूड़े में शामिल हो जाती हैं। तो इसकी वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है। एंड एक्चुअली मैं ये बोलूँगी कि अगर हम अपना खुद का ही कंजम्पशन पैटर्न देखें 15-20 साल पहले तक भी, तो इनमें से काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो इनके विकल्प हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमारे घरों में ही हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बैन को इम्प्लीमेंट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी।
तो भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या कितनी बड़ी है, और क्या केवल इन 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाकर इसका हल निकल सकेगा?
अगर आप प्रति व्यक्ति प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन देखें तो भारत में विकसित देशों से ये नंबर काफ़ी कम है। तो जो एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति अराउंड 13-13.5 केजीज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, और वर्ल्ड एवरेज इज़ अबाउट 28 केजी। लेकिन हमारा जो ये पर कैपिटा प्रति व्यक्ति वेस्ट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ यू नो ग्रेट कंसर्न। जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, दिस इज़ रफली कंसिडर्ड टू बी 1/3, 1/3 ऑफ द टोटल प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम। तो अगर हम इस बैन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं तो लगभग मोटा मोटा हम 1/3 ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वी विल स्टिल हैव 2/3 ऑफ द प्रॉब्लम टू डील विद।
नियम बनाना एक बात है और उन्हें सख्ती से लागू करना दूसरी। तो इस प्रतिबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या सरकार कुछ कदम उठा रही है?
सरकार ने सेंट्रल, स्टेट, सिटी लेवल पर विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट टास्क फोर्स बनाए हैं। काफ़ी स्टेट और सिटी लेवल गवर्नमेंट्स अपने अपने एक्शन प्लान बना रहे हैं। यूनेप ने ही कुछ स्टेट एंड सिटी गवर्नमेंट्स की इसमें को सहयोग करते हुए बनाया है। जैसे बिहार में अभी SUP इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान बना है जो यूनेप ने सपोर्ट किया है। काफ़ी सिटीज़ को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी सिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विकल्पों पे काफ़ी जोर दे रहे हैं कि किस तरह के विकल्प होने चाहिए और इन विकल्पों को किस तरह के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, सब्सिडी एक्सेट्रा। तो इन सब दिशाओं में काफ़ी चर्चा और नीतियों पे, किस तरह की नीतियाँ होनी चाहिए उन पर चर्चा हो रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जनरली लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, इन सब दिशाओं पे काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अगर हमें इस बैन को इफ़ेक्टिव करना है तो लोगों को अफोर्डेबल विकल्प देना बहुत ज़रूरी है।
तो इस निर्णय के पीछे यूनेप की क्या भूमिका रही है और आगे क्या रहने वाली है, किस तरह से सरकार के साथ मिलकर इस पर काम करेगी?
ये जो प्लास्टिक प्रॉब्लम है यूनेप के लिए एक प्रायोरिटी प्रॉब्लम है। अभी यूनेप का रिसेंटली इसी साल में 5th यूनाइटेड नेशंस असेंबली कंक्लूड हुई है, जिसमें सारे देशों ने मिलकर ये निर्णय किया कि एक इंटरनेशनल ग्लोबल लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बनाएंगे प्लास्टिक वेस्ट को एड्रेस करने के लिए. तो ये एक ग्लोबल प्रायोरिटी है यूनेप के लिए. इंडिया में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बहुत काम कर रहे हैं. आई थिंक तीन मेजर एरियाज़ हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं. एक तो अनुसंधान, तो किस किस तरह के प्लास्टिक्स हैं, इनके क्या स्रोत हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं, इनके रोकथाम के लिए क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्या विकल्प होने चाहिए, और बाकी देशों में क्या इस तरह की सॉल्यूशंस हैं जो जिन्होंने काम किया है और जो इंडिया जिनसे सीख सकती है. सो इन सब एरियाज़ में हम गवर्नमेंट के साथ सहयोग कर रहे हैं. दूसरा एरिया है नीतियाँ बनाने के लिए. तो गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में एक मरीन लिटर सेल की स्थापना की गई है जिसको यूनेप सपोर्ट कर रहा है. बैक एंड सपोर्ट फॉर रिसर्च टूवर्ड्स पॉलिसी, कि जिस तरह का उन्हें पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए पहले मार्केट को समझना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों को समझना पड़ेगा, तो वो हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. और जैसे मैंने पहले कहा कि नॉट जस्ट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल बट स्टेट्स में भी, बिहार में है आगरा, हरिद्वार, प्रयागराज, पटना, इन सब काफ़ी सिटी लेवल पे भी हम काम कर रहे हैं नीतियाँ बनाने के लिए. एंड द लास्ट एरिया जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट स्तरों पर क्षमता बढ़ाने के लिए इस बैन को और प्लास्टिक वेस्ट इन जनरल उसके मैनेजमेंट के लिए. तो जैसे हम रैग पिकर्स, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनफॉर्मल सेक्टर का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, उनके साथ, रिसाइकलर्स के साथ, और स्पेसिफिक इंडस्ट्री ग्रुप्स, जैसे हमने टूरिज्म सेक्टर के साथ काम किया है आगरा में, फैशन इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह वो रिसाइकलिंग, सर्कुलैरिटी, ये सब अपने ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रिंसिपल्स में जोड़ें.
तो इस प्रतिबंध से कितने समय में और किस तरह का असर होने की उम्मीद है? देश में प्लास्टिक कचरे की समस्या सुलझाने में ये कितना कारगर साबित होगा आपके हिसाब से?
सिंगल यूज प्लास्टिक कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1/3, एक तिहाई ऑफ आर टोटल प्लास्टिक पोल्यूशन. तो अगर हम इस बैन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो आई थिंक एक काफ़ी बड़ा हमारा प्रॉब्लम कम हो जाएगा. इसके साथ बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज हम एड्रेस कर पाएंगे. हमें पता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन आज हमारे जीव जंतुओं पर किस तरह का इम्पैक्ट कर रहा है, पानी पे, हवा पे, क्योंकि ये वाला प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता, इसको जलाया जाता है, तो उससे एयर पोल्यूशन पे भी कंट्रीब्यूट करता है. प्लास्टिक प्रोडक्शन इटसेल्फ कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी होती हैं, तो वो एस्पेक्ट भी है इसका जो कंट्रोल होगा. हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स जो सिंगल यूज प्लास्टिक से क्लॉग हो जाते हैं, हम देखते हैं मानसून बारिशों के टाइम क्या हाल होता है सिटीज़ का, उस पर भी इसका इसका प्रभाव पड़ेगा. तो मुझे लगता है बहुत स्तरों पर अगर हम एक प्लास्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो बहुत स्तरों पर हम इसका फ़ायदा देखेंगे. हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि अब प्लास्टिक हमारे दिनचर्या का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है. तो धीरे धीरे बिना प्लास्टिक के रहने की आदत डालनी पड़ेगी, स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की. तो लेकिन यह असंभव नहीं है. इसको इसका जल्दी इम्पैक्ट देखने का दूसरा एक जो हमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो उद्योग हैं जो करेंटली प्लास्टिक मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व हैं, ऐसे कुछ 30,000 उद्योग हैं इंडिया में, और उसमें अबाउट 90% जो हैं वो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं. तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम इनको साथ लेके चलें और इनको विकल्पों की तरफ, प्लास्टिक प्रोडक्शन की जगह इनके विकल्पों की तरफ या किसी और कमोडिटी के प्रोडक्शन की तरफ इनको मोड़ें. तो उनका उनका सपोर्ट करना थ्रू द राइट पॉलिसी, फिस्कल इंसेंटिव्स, वो बहुत ज़रूरी होगा अगर हमें इसमें जल्दी इम्पैक्ट देखना है.
भविष्य की क्या योजना है? क्या इस प्रतिबंध का और विस्तार होने की संभावना है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबंध लगा है ये प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर पहला कदम है?
मैं कहूँगी इसके दो पहलू हैं. एक तो ये जो प्रतिबंध है इसको हमें, ये शायद आगे और बढ़ेगा और प्रोडक्ट्स और आइटम्स इस बैन में इंक्लूड किए जाएंगे. लेकिन जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, किस कितना हम अच्छी तरह ये इसको इन्फोर्स कर पाएँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. बट इसका जो दूसरा पहलू है कि हम जो नॉन सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम है, उसको उसको कैसे टैकल करते हैं. तो इन जनरल आई थिंक कूड़ा कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट इज़ समथिंग जो जिस पे बहुत हमारे सिटीज़ में उस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है. रिसाइकलिंग पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है. और ये सब जो है ये हमें अब आई थिंक प्रोडक्ट्स को नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है एट द डिज़ाइन स्टेज. सो ये सिर्फ ये नहीं कि जब हमने यूज़ कर लिया उसको फेंकने के समय हम सोचें कि प्रोडक्ट्स का क्या करना है, लेकिन पूरा जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का उसको नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है फ्रॉम द डिज़ाइन स्टेज इट्सेल्फ, ताकि उसमें से कम कचरा जनरेट हो और मैक्सिमम रिसाइकिलिंग की तरफ जाए. इस प्लास्टिक समस्या से अगर हम छुटकारा चाहते हैं तो इवेंचुअली हमें इसी तरफ मुड़ना पड़ेगा कि हम अपनी पूरी इकोनॉमी को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वेस्ट जनरेशन मिनिमाइज हो, रादर देन फोकसिंग ऑन वो वेस्ट निकल गया उसको कैसे मैनेज करें.